नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने शिक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सशस्त्र बलों के बीच परिचालन साझेदारी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने गाजा शांति समझौते के पहले चरण का स्वागत किया, कहा यह स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को बिहार विधानसभा चुनावों में प्रतिद्वंदी दलों या उम्मीदवारों को निशाना बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया। और महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत आज विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला खेल रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार है और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून का शासन उनके संबंधों की नींव है। मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के प्रति संकल्पबद्ध है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के बारे में श्री मोदी ने कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, जिससे उद्योग और ग्राहक दोनों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग सुनिश्चित करने में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण 2025 महत्वपूर्ण कदम है।
रक्षा सहयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। ये विशेष संयोग है कि जहां एक ओर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे नौसैनिक जहाज कोंकण 2025 ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन भविष्य पर केंद्रित आधुनिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए श्री स्टार्मर ने कहा है कि शुल्क कम होने से, एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच बढ़ाने से दोनों देशों में विकास बढ़ेगा, जीवन बेहतर होगा और रोजगार उपलब्ध होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की भारत यात्रा के दौरान संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति के पुनर्गठन के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर की घोषणा की। श्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स की उपस्थिति में ये समझौते हुए हैं। दोनों नेताओं ने रक्षा, उद्योग, साइबर रक्षा, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय चुनौतियों सहित भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग के सभी आयामों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुदृढ़ रक्षा उद्योग साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने सीमा पार से आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर ऑस्ट्रेलिया के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने कहा है कि भारत के साथ नया रक्षा समझौता दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संचालन भागीदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण में इसराइल और हमास के बीच हुए समझौतों का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि बंधकों की रिहाई और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने से लोगों को राहत मिलेगी और दीर्घकालिक शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा है कि यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व को भी दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहा करने के समझौते की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने संबंधित पक्षों से समझौते की सभी शर्तों को पूरी तरह पालन करने का भी आग्रह किया है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को बिहार विधानसभा चुनावों और विधानसभा उपचुनावों के दौरान विपक्षी उम्मीदवारों की निशाने बनाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के इस्तेमाल पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत लागू किए हैं। आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य प्रकार के विज्ञापनों पर AI के माध्यम से गलत सूचना फैलाने के लिए सख्ती से मना किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सीटों और टिकट के बंटवारों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके सहयोगी दलों के बीच गतिरोध जारी है। एक रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर रूठने और मनाने का खेल जारी है। एनडीए में जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तेवर जहां नरम हुए हैं, वहीं भाजपा को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की ओर से अभी तक राहत भरा कोई संदेश नहीं मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी के रुख से जनता दल यूनाइटेड में भी खलबली मची हुई है। महागठबंधन में भी सीटों की संख्या और घटक दलों की शर्तों के कारण अभी तक टिकट बंटवारे का संकट हल नहीं हो पाया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में खांसी के सिरप लेने से बच्चों की मौत की राज्य सरकार प्रतिक्रिया करते हुए सक्रियता से जांच कर रही है। हानिकारक कोलरिफ कॉफ सिरप बनाने वाली कंपनी स्ट्रेशन फार्मास्यूटिकल के मालिक को कल तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में अब तक इस जहरीले कॉफ सिरप से 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हमारे संवाददाता आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले जीएसटी सुधारों पर एक रिपोर्ट लेकर आए हैं।
नए जीएसटी सुधारों से आंध्र प्रदेश के किसानों, कारीगरों, उद्योगों और छोटे व्यवसायों को बड़ा फायदा मिला है। 14 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले मछली पालन उद्योग को इन कटौतियों से सीधा लाभ मिला है। मछली पकड़ने के उपकरण, मछली के तेल और डीजल इंजन और पंप जैसे सामानों पर जीएसटी पहले के 12% और 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे मछुआरा समुदायों पर वित्तीय बोझ कम हुआ है। इसके साथ ही दूध और उससे जुड़े उत्पादों पर जीएसटी घटने से राज्य के डेयरी क्षेत्र को सीधा फायदा मिला है, जिससे 24 लाख किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ ही दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों की कीमतें भी 5-7% की कमी आई है। इससे घरेलू लागत कम होने के साथ ही त्योहार के दौरान खरीदारी बढ़ने और डेयरी किसानों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। खाने पीने और अन्य सामान पर जीएसटी की दर 5% होने से अराकू कॉफी, कोंडापल्ली खिलौने, चमड़े की कठपुतलियां जैसे पारंपरिक उत्पाद अब सस्ते हुए हैं, जिससे कारीगरों की आय में वृद्धि होने के साथ ही इन मानों के निर्यात बाजारों का भी विस्तार हुआ है। संशोधित जीएसटी दरों के साथ आंध्र प्रदेश में मछली पालन, डेयरी और पारंपरिक शिल्प जैसे क्षेत्र अधिक किफायती और प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। ये सुधार रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज विशाखापट्टनम में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 62 रन बना लिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने कहा है कि देश के युवाओं को एक बड़ा हिस्सा तंबाकू की लत से परेशान हो रही है।
किसी भी तरीके से, किसी भी स्वरूप में एक तंबाकू के उत्पाद की प्रमोशन या उसकी एडवर्टाइजिंग, इसको भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है। ये सारे प्रयास इसलिए है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को बचा सकें। माइनर्स के बीच में जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनको तंबाकू के उत्पाद नहीं बेचे जा सकते। ये सारे प्रयास हमने किए हैं। जो हमारे विद्यालय है, स्कूल से उनके 100 मीटर की दूरी में ये जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं उपलब्ध हो सकते।
मौसम विभाग ने आज दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंधक निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि को गति देने में भारत की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक विकास में रुझान में बदलाव आया है और विशेषकर चीन की विकास दर में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि भारत एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में विकसित हो रहा है। IMF ने इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।